भागवतम दशम स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 4। निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादा गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना। निवृत्त मुक्त तर्षैः काम या भौतिक कार्यों से उपगीयमाना वर्णित या गाए जाने वाला भव औषधा भौतिक रोग की सही औषधि से श्रोत्र कानों से सुनने की विधि मनः मन के लिए विचार का विषय अभिरामात् ऐसी महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से कह कौन उत्तम श्लोक भगवान का गुण अनुवादा ऐसे कार्यों का वर्णन करने से पुमान मनुष्य विरज्जेत अपने को विलग रख सकता है बिना रहित पशुघ्नात कसाई अथवा अपने आप की वध करने वाले से। अनुवाद। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव भगवान की महिमा का सुनना कसाई या पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन हरे कृष्णा। थोड़े ही दिनों में हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं और अभी 3 दिनों में यानी मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 8 दिन पहले बलराम जी का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। तो आज कल और परसों भगवान श्री कृष्ण की जो आविर्भाव लीला है इसके बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में जो सारे भागवत के दूसरे स्कंदों से सबसे विस्तृत स्कंद है, जिसमें तकरीबन 90 अध्याय हैं, दूसरे कोई भागवत के कोई इतना अध्याय नहीं है दूसरे स्कंदों में। इसमें से 40 के करीब वृंदावन लीला, 10 मथुरा में, और बाकी जो 40 है वो द्वारका लीला। खास करके जो पहले 4 अध्याय हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला बहुत सुंदर से सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज को सुनाए। दशम स्कंद की शुरुआत में पहले 15 या 16 श्लोक परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करने के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ, श्रद्धा पूर्वक, बड़ी तीव्रता के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृपया आप मुझे थोड़ा विस्तृत रूप से सुनाइए ये कृष्ण लीला को। परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो खाना पीना और सोना सब छोड़कर गंगा के तट पर आकर बैठे। परीक्षित महाराज जब वहां बैठे हुए थे, प्रश्न पूछ रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी का आना हुआ। 9 स्कंद हो चुके हैं, यानी करीब 5 या 6 दिन हो चुका है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और जितने सारे ऋषि मुनिगण वहां एकत्रित हुए थे, पिछले 6 दिनों से न खाया है, न कुछ पिया है और न सोए हैं। तो साधारणतः क्या होता है, अगर लगातार खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, तो स्वाभाविक है कि आदमी थोड़ा थक जाता है और कहता है कि महाराज थोड़ा शॉर्टकट में कथा खत्म करो कितना लंबा खींच रहे हो। पर परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से हरि कथा का आश्रय ले रहे, क्योंकि उनका 7 ही दिन बाकी था। अगर परीक्षित महाराज पूरे जीवन जीते तो पूरा दिन सुनते, ऐसा नहीं कि 7 ही दिन सुनते थे और बाद में भगवत कथा हो गया, नहीं। अगर वो जीवित रहते तो पूरे जिंदगी भर सुनते वो। पर 7 दिन था और उसमें समय गंवाना नहीं चाहते थे वो, और वो पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों का, चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। भगवान और उनके भक्त जितने हुए, प्रायशः सारे अवतार क्षत्रिय वंशों में आए, क्योंकि क्षत्रिय काम है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय सदृष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, क्षत्रियों का कार्य। प्रभु रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, साधारणतः भगवान जब अवतरित रहते हैं या फिर वामन देव ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में, साधारणतः क्षत्रिय परिवार, और वो भी 2 प्रमुख परिवार हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंश में प्रभु रामचंद्र आए रघुवंश में, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण की अवतरण, उनका अवतरण हुआ। तो इसमें कई सारे महान राजा हो चुके हैं, कितने सारे मनु स्वयंभू मनु, चक्षुषा मनु, तो सब मनुओं का भी वर्णन हुआ है। तो अभी कथित हो वंश विस्तार हो, अपने विस्तृत रूप से सुनाया है भवता सोम सूर्यो, चंद्रवंश और सोम सूर्यवंश सबका आपने सुनाया है। चरितम परमाद्भुत, बड़े अद्भुत हैं, एक एक इनका चरित्र भी बहुत ही अद्भुत है। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुखदेव महाराज क्यों कह रहे हैं ये कथा के बीच में, एक धन्यवाद देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर से कथा सुनाया। दूसरा उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और बोलते जाइए और बोलते जाइए। और तीसरा अपनी तीव्रता प्रकट कर रहे थे कि मैं सुनना चाहता हूं थोड़ा विस्तृत रूप से, बाद में कहेंगे विस्तरात, विस्तृत रूप से बताइए। क्यों विस्तृत रूप से बताइए, क्यों शॉर्टकट मत लीजिए? क्योंकि एक, मैं कम बुद्धि वाला हूं, आप शॉर्टकट बता देंगे मिस हो जाएगा, मेरा पॉइंट ही मिस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप बोल दिए कथा, उसको विस्तृत से बताइए ताकि मैं ठीक से समझ पाऊं। और दूसरा प्रेम है, बार बार अच्छे तरह से प्रेम से सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर कहते हैं अब मुझे बताइए कि यदोश्च धर्मशीलश्च नितराम मुनिसत्तमा तत्रा वंशा अवतीर्णस्य विष्णुर वीर्याणि शमशनः। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं, अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने वह अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य, खास करके यदु का नाम ले रहे हैं, यदुवंश, यदुवीर, यदुकुल नंदन भगवान का नाम है, खास करके रघुवंश, जैसे प्रभु रामचंद्र का रघुवंश में है रघुकुल नंदन, इसी तरह से यदुकुल नंदन। तो यदुवंश में क्यों भगवान अवतरित हुए, उस वंश का गुणगान होने के लिए। मलयस्यैव चंदनम, कुंती महारानी कहती है मलयस्यैव चंदनम, चंदन तो हर पहाड़ में उगता है क्योंकि मलय में उगता है, इसीलिए मलय का चंदन बोलते हैं उसको। चंदन वहां उगने से मलय बड़ा प्रसिद्ध हो गया, आज मलेशिया, सूरज कहीं भी उग सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी उग सकता है, क्योंकि पूर्व से उगता है तो पूर्व की महिमा बढ़ गई। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंभे से आ सकते हैं नरसिंह भगवान के समान, पर यदुवंश में आकर यदुवंश को प्रसिद्ध कर दिए, उनकी महिमा बढ़ा दिए, उनकी महिमा थी, यदु महान राजा थे, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। और फिर कहते हैं अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात। क्यों भगवान अवतरित हुए इसको कृपया बड़े विस्तृत रूप से बताइए। ये कहने के पश्चात इस श्लोक को कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक, जहां परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि हरि कथा की महिमा क्या है, कृष्ण कथा की महिमा क्या है, किससे सुनना चाहिए, इसे सुनने का असर क्या है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुनेगा नहीं इस कथा को। एक ही श्लोक के अंदर सब बता दिया। यद उत्तम श्लोक गुण अनुवादात, यद उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, दूसरा नाम है भगवान का, क्यों उत्तम, उद्गत तम, ये श्लोक जो भगवान के गुणगान करते हैं वो श्लोक सुनने से उद्गत तम, तमोगुण इस भौतिक संसार जो है ये अंधकार है, बिना सूरज के फिर से अंधकार हो जाएगा। सूरज चंद्र या अग्नि ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो पूरा अंधकार हो जाएगा। ये अंधेरा संसार है, अज्ञानमय संसार है। पर हरि कथा सुनने से उद्गत तम, ऊपर उठ जाता है आदमी, इसीलिए उत्तम श्लोक। और भगवान का गुणगान, भगवान का गुणगान जो भी करता है, कैसे भी रचना रची गई हो, वो उत्तम श्लोक है, क्योंकि उससे उत्तम और कोई शब्द, दूसरों का वर्णन जो है वो उतना शुद्ध नहीं है, उतना पवित्र नहीं है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, तद्वाक वो शब्द की रचना विसर्गो जनता अघ विप्लवो, जिसके सुनने से जो पापीमय जीवन है, पापमय जीवन कोई जिया है, उसके जीवन में भी एक विप्लवो, एक रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, क्रांति उत्पन्न हो जाता है, उसके जीवन में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, भले उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक से नहीं रचना की गई हो, ग्रामर का मिस्टेक हो, व्याकरण में ठीक नहीं हो, फिर भी क्योंकि भगवान का गुणगान हो रहा है, तो प्रामाणिक व्यक्ति लोग निश्चित रूप से उसे सुनेंगे, श्रृण्वंती गायंती, उसको गाएंगे, गृणंती और उसे स्वीकार करेंगे, साधव। सो यद उत्तम श्लोक गुण अनुवादात, अनुवाद अनुवादात, गुण भगवान के गुण का अनुवादात, अनु का मतलब है लगातार गुणगान करना, और अनु का मतलब है परंपरा में आए हुए तत्वों के अनुसार वर्णन करना, अपनी मानसिक बात नहीं या मनोकल्पना नहीं, जैसा परंपरा में श्रवण किया है वैसे सुनाना उसको। गुणानुवादात यद उत्तम श्लोक गुणानुवादात, किससे सुनने से ज्यादा असर पड़ता है, निवृत्त तर्शैर उपगीयमाना। साधारणतः भारत में अभी भी भले कलयुग इतना बढ़ गया है, प्रगति हो गया, कलयुग का अग्रसर हो रहा है पूरी रफ्तार से, फिर भी अभी भी कहीं अगर अनाउंस करेंगे भागवत सप्ताह होने वाला है, आज भी लाखों लोग एकत्रित होते हैं। ये भारत की महिमा है। ये भागवत कथा हो रहा है, गीता का कोई प्रवचन कर रहा है, आज भी हजारों हजारों लाखों की संख्या में कुछ जगह एकत्रित होते हैं लोग। जगन्नाथपुरी में देखिए आप, रथ यात्रा में, या इलाहाबाद में जब कुंभ मेला होता है, पवित्र स्थानों पर, पवित्र दिनों पर, और हरि कथा जहां भी एकत्रित होता है वर्णन, आज भी लोग एकत्रित होते हैं। तो उपगीयमाना, इस तरह से चला आया ये प्रथा, पर दुर्भाग्यवश उसका पूरा फायदा उठाते हुए कई लोग इस तरह से भागवत सप्ताह के रूप में कुछ भी कहते हैं और उसका असली असर नहीं पड़ता है। तो कौन कह सकता है निवृत्त तर्शैर उपगीयमाना, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, निवृत्त, निवृत्त यानी रिटायर्ड, निवृत्त हो गया है किस चीज से, तृष्णा, भौतिक इच्छाओं से जो निवृत्त हुआ है, वो ही ये कथा अच्छी तरह से कर सकता है। उसके मुख से जब कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में क्रांति हो जाएगी, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। निवृत्त तर्शैर, सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपने पेट पालने के लिए नहीं, अपना यश गुणगान बताने के लिए नहीं, केवल भगवान के सेवा के रूप में भगवान का जो संदेश है उसको बड़े कृपा पूर्वक लोगों को पहुंचाने के हेतु आचार्यों के दिए हुए संदेश के अनुसार और अपनी शुद्धिकरण के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन दिया पूरे विश्व के सम्राट महाराज परीक्षित को, बोले नहीं परीक्षित वैसे भी आप मरने वाले हो, सारा राज्य मुझे सौंप दो, बड़ा चेक लिख के दे दो 5 करोड़ का, वैसे भी तुम जा रहे हो क्या फर्क पड़ना है तुमको। बोले चले गए ऐसे ही, कपड़े भी नहीं पहने थे वैसे ही चले गए वो सुखदेव महाराज। जड़ भरत महाराज रघुगण को संदेश दिए, बोल सकते थे अच्छा शिष्य बन जाएगा ये तो राजा है, संदेश दिए महाराज रघुगण प्रणाम किए धन्यवाद दिया चलते बने चले गए वहां से। इसके बाद कुछ वर्णन नहीं है क्या किए वो जड़ भरत। तो निवृत्त तर्षय रूपगीय माना भवौषधात, अब बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से सुनने से क्या होता है, बोले दो चीज, भव औषधात, ये औषधि है। हरि कथा को औषधि की तुलना भी दी गई है, औषधि की तुलना क्यों दी गई है, कहा जाता है कि हरि कथा, हरि का नाम और हरि कथा, इसको तीन अलग अलग तुलना दी है। कभी कभी मणि की तुलना दी जाती है, कभी मंत्र की तुलना दी जाती है और कभी औषधि की तुलना दी जाती है। मणि की तुलना क्यों, बोले मणि मंत्र और औषधि ये तीन चीज जो है वैदिक संस्कृति में अचिंत्य शक्ति है, इसके अंदर मणि के अंदर अचिंत्य शक्ति है। इसीलिए आप कोई ज्योतिष के पास जाओगे बोले ये मणि पहनो इससे उसमें कुछ तो होता है बहुत अच्छा, चिंतामणि, चिंतामणि ऐसा है आप कहीं भी स्पर्श करोगे, अगर ये टेबल को स्पर्श करोगे या ये इस ग्लास को स्पर्श करोगे तो सोने का हो जाएगा। सोचो करताल को स्पर्श करेंगे तो सोने का हो जाएगा, कितने किसको नहीं चाहिए ऐसा मणि। तो मणि की तुलना, मणि ऐसा है खासियत है कहीं स्पर्श किया तो सोने का बन जाता है। इसी तरह से हरि कथा भी, हरि नाम भी चिंतामणि, चिंतामणि की तुलना दी गई है, पारसमणि जैसी है ये। क्योंकि हरि कथा सुनने से हमारा हृदय जो आज लोहे के जैसा कठोर है सोने जैसा बन जाता है। अगर बार 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 सुनते रहेंगे इस मणि के स्पर्श से लोहे का जैसा, तदश्मसारम हृदयम बतेदम अश्मसारम, ये लोहे का जैसा हमारा जो हृदय कठोर है वो सोने के जैसा बन जाता है मुलायम। नारद मुनि के कहने पर हरि नाम की जो मणि है वो मृगारी ने लिया और क्रूर मृगारी जो है एकदम महाभक्त बन गया। हरिदास ठाकुर से मुख से ये मणि निकली और जब वो वेश्या के हृदय में पड़ी तो वो वेश्या आगे बढ़कर एक महान वैष्णवी बन गई। तो हरिनाम चिंतामणि जो है इतनी शक्ति रखने वाली है कि अपवित्र चीजों को स्पर्श करके इतना पवित्र बना देती है। तो मणि की तुलना, फिर मंत्र की तुलना, मंत्र, मंत्र में भी बहुत शक्ति होती है वैदिक संस्कृति में, आजकल मंत्र में उतनी शक्ति नहीं है क्योंकि बोलने वाला शुद्ध नहीं है, नहीं तो मंत्र में शक्ति होती है। आप देखेंगे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अश्वत्थामा हो, अर्जुन हो, कर्ण हो, इन लोगों के पास तीर होते थे अपने कमान में, तीर निकालते थे, साधारण तीर लगता था देखने में लोहे का, पर उसमें मंत्रोच्चारण करते थे, एक मंत्र का पढ़ दिया और फिर उसको छोड़ा पूरे ब्रह्मांड को नाश करने की ब्रह्मास्त्र जैसे एक अस्त्र बन जाते थे, वायव्य अस्त्र, ये अस्त्र वो अस्त्र, पूरी सेना को नष्ट करने वाली शक्ति एक छोटी सी लकड़ी के अंदर, एक घास का तिनका लिया, उसको मंत्र डाल दिया, ब्रह्मास्त्र बन गया। मंत्र की शक्ति। विमान भी लोग उड़ के जाते, उसमें नहीं कि पेट्रोल डाला, ये सब नहीं, विमान में बैठे कोई मंत्र था, एक मंत्र उच्चारण कर दिया तो विमान उड़ने लगता था। पुष्पक विमान ऐसे ही था, मंत्री शक्ति पे चलता था। आज भी हमारे वाड़ा में एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि किसी को अगर सांप काट देता है, विष फैल रहा है, वो गांव के एक आदमी को ले आते हैं और मंत्र पढ़ता है, वो बांध देता है, मंत्र पढ़ता है तो देख रहे ऐसे पूरा विष नीचे नीचे उतर जाता है फिर निकल जाता है। ऑफकोर्स उसको बहुत स्ट्रिक्ट, बाहर नहीं खाते वो आदमी, वो बोलता है आज तक पूरी जिंदगी मैंने एक बार भी बाहर नहीं खाया, मैं खुद का पका के खाता हूं। क्यों? क्योंकि बाहर खाया तो मेरी शक्ति चली जाएगी। इतना सख्त नियम पालन करते हैं तो उनके मंत्र में इतनी शक्ति होती है। और तीसरी, औषधि की तुलना, हरि कथा को औषधि की तुलना। क्यों? क्योंकि जब औषधि कितना होता है, मलेरिया, 72 किलो या 80 किलो का आदमी, उसको बुखार, उल्टी, सर दर्द सब हो रहा है, और उसको आपको 10-50 या ग्राम का इतना छोटा, 50 नहीं, 5 mg 10 mg का एक छोटा सा टेबलेट अंदर डाला, क्या शक्ति संचार, पसीना छूटता है, ठीक हो गया। औषधि के अंदर इतनी शक्ति होती है। इसी तरह से भाव औषधि, ये भाव सागर जो बीमारी है, भाव रोग, फिर से जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, बार बार ये आत्मा को बीमार हो गई, और एक शरीर और एक शरीर और एक शरीर और एक शरीर, करोड़ों जन्मों से ये बीमारी हो रही है, इसमें से निकलना है तो भवौषधि, हरि कथा या हरि नाम जो है भवौषधि। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर एक सुंदर श्लोक लिखे हैं इस हरि कथा के बारे में, हरि नाम, हरि के गुण के बारे में, किस प्रकार की औषधि है। बोले अलग अलग प्रकार की औषधि। व्यामोह प्रशम औषधम, मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम, दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम, त्रिभुवने संजीवनैक औषधम, भक्त्यात्यंत हित औषधम, भवभय प्रध्वंसनैक औषधम, श्रेय प्राप्तिकर औषधम, पिबमना श्री कृष्ण दिव्य औषधम। मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर आलवार, एक ग्रे महाजन हुए, वो लिखते हैं पीब मन, अपने मन को कहते हैं हे मेरे मन, पीब आप पियो, कैसे, मुंह से नहीं, नाक से नहीं, कान से, इस औषधि को कान से पिया जाता है। पीब मन क्या, श्री कृष्ण दिव्य औषधम, श्री कृष्ण के दिव्य औषध को पियो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये दिव्य औषध है, इसके श्रवण करने से फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मेरे धाम को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। तो पिबमाना श्री कृष्ण दिव्य औषधम, ये दिव्य औषध है। और इसका क्या क्या फायदा है, बहुत सारे फायदा है ये औषध का। इस दुनिया में एक औषध सिर्फ एक चीज के लिए, खांसी का दवा सर्दी के लिए नहीं ले सकते, बुखार का दवा जुलाब के लिए नहीं ले सकते, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, उल्टा सीधा कोई ले लिया, इसीलिए लिखते हैं बच्चों से दूर रखो, पी लिया तो औषधि का उल्टा असर हो जाएगा। तो बोले ये औषधि का बहुत सारे एडवांटेज हैं। व्यामोह प्रशम औषधम, व्यामोह प्रशम औषधम, अगर हरि कथा बार बार सुनते रहेंगे, हरिमा हरि कथा हरि हरि नाम बार बार लेते रहेंगे, व्यामोह प्रशम, हर एक व्यक्ति मोह में है, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और ये सब कुछ मेरा है, मैं और मेरा, ये बड़ा मोह है, इस मोह से निकलना बहुत मुश्किल है, जन्म जन्म से ये बीमारी है। पर आप कुछ मत करो, भक्तों के संग में आकर ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तीव्रता से हरि कथा सुनते रहो। अगर सुनते रहोगे तो मोह चला जाएगा। व्यामोह प्रशम नष्टो मोह, अर्जुन कहता है गीता में, प्रभु आपसे गीता सुनने के बाद नष्टो मोह, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, स्मृति में लब्धा, स्मृति मिल गई, मैं कौन हूं आप कौन है। क्योंकि हरि कथा सुनने से भगवान की महिमा समझ में आता है, भगवान कितने महान है, हम कितने तुच्छ हैं, स्वाभाविक रूप से नम्रता आ जाती है, अहंकार चला जाता है, समझ में आता है कि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम। व्यामोह प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम। मनोवृत्ति, मन इधर उधर भागता रहता है हमेशा, मन को नियंत्रण करके भगवान को चरण में लगाने के लिए मुनियों को मदद करता है हरि कथा का औषध, हरि नाम का औषध। हम सुनते हैं विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या किए, पर क्योंकि भगवान के नाम में हरि कथा नहीं सुन रहे थे इसीलिए फिर से भ्रमित हो गए। शौबरी मुनि यमुना के नीचे बैठे हुए थे, पर क्योंकि इंद्रियों को संयम किए हुए थे, मन को पकड़ के बैठे हुए थे, पर क्योंकि मन परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचे रस का आस्वादन नहीं कर रहा था, इसीलिए पतन हो गया उनका। पर वही महाराज अम्बरीश, हालांकि पूरे विश्व के सम्राट थे वो, पर उनका कभी पतन नहीं हुआ। क्यों? उनका रहस्य क्या था? सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, हमेशा मन में भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम के बारे में, कथा के बारे में, उनकी सुंदर लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहते थे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, मुख से हमेशा हरिनाम लेते रहते, नाम या भगवान का गुणगान, जैसे गोपियां हमेशा कुछ अलग अलग भजन, भगवान के सारी लीलाओं को एक स्वतंत्र भजन बना दिए थे वो, हमेशा कीर्तन करते रहते थे। मुनि मनो वृत्ति प्रवृत्ति औषधम, जिसके मुख से हमेशा हरि कथा निकलते रहती है, उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, वो व्यक्ति जो है आराम से भगवत धाम, मन मना भवमत भक्तो, शरणागत होने के लिए अनुकूल हो जाता है। और जिसको हरि कथा का हमेशा सुनता नहीं है, उसका मन जितना भी वंश नियंत्रण करने का प्रयास करे, वश में नहीं आता। व्यामोह प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम। फिर कहते हैं दैत्येन्द्र, दिति के जो पुत्र है वो दैत्य, सबके सब राक्षस, दानव कुल के, और उसमें भी उनके लीडर दैत्येन्द्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे दैत्य इंद्र आर्तिकर औषधम, वो पूरे दुनिया में भय पैदा कर रहे हैं, पर उनके हृदय में भय पैदा करने वाला औषध ये हरि कथा का औषध है, हरि नाम का औषध है। हिरण्यकशिपु जिसको देख के देवता डरते थे, वो प्रहलाद को देख के डर रहे थे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को देख के डरता था, वो तो हमेशा हरि नाम लेते रहता है, चुप, सहन नहीं कर सकते वो सहन नहीं कर सकते, कोई भूत है, कोई चोर लोग है, सूरज को सहन नहीं कर सकते, सूरज आ गया तो सब खुल जाता है, एक्सपोज हो जाता है, इसलिए भाग जाते वो लोग। इसी तरह से हरि नाम सुनते तो दैत्यों को सहन नहीं होता, क्रोधित हो जाते हैं, मार डालते हैं, भाग जाते हैं। दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम, इसी तरह से हमारे हृदय में भी जो बड़े बड़े दैत्य कड़े, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के, ये पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, हम उनसे डरते हैं, पर जब हरिनाम लेने लगते हैं, हरिकथा श्रवण करते रहते हैं, दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम नियंत्रण में आ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम त्रिभुवने संजीवनैक औषधम, संजीवनी, मृत संजीवनी बोलते हैं उसको, मरे हुए को भी जिंदा करने वाला औषध, कहते संजीवनी, जड़ी बूटी है अपना, हनुमान जी लाए ना, लक्ष्मण जी जब बेहोश होकर गिर गए थे, बोले सुबह तक चले जाएंगे, बस सुबह तक उठ नहीं पाएंगे। बोले सुबह तक अगर संजीवनी नहीं लाया तो हनुमान जी गए संजीवनी ले आए। मरे हुए को भी जिंदा करने वाले की शक्ति रखती है हरि कथा, ऐसी है। आप बोलेंगे हम तो जिंदा है ना, हम थोड़ी मरे हुए हैं। अरे सब के सब मरे हुए हैं। बोले क्या महाराज, सब मरे हुए हैं क्या, ऐसे कैसे बोलते हो? बोले हां, अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो चलते फिरते मुर्दे हैं। ऐसा कैसे बोलते हो आप, चलते फिरते मुर्दे? बोले हां, क्योंकि ये कार्य जो भी हम करते हैं, जब हरि नेहा विक्रम नाशोस्ति, सब कुछ नष्ट होने वाला है। सपने में, अगर सपने में आप करोड़पति बन गए, समझ लो आप सोए हुए और सपने में आपको लॉटरी लग गया, कितने समय के लिए लॉटरी लग गया? 10 मिनट के लिए सपना लगा और 10 मिनट में 10 करोड़ मिल गया, पकड़ने गया सपना खुल गया, तो क्या फायदा? वो 70 मिनट का सपना है, ये 70 साल का सपना, सपना ही है, वो भी छोड़ के जाना है। पर इतना गंभीरता से लेते हैं, पर ये जो है अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणम, करोड़ों करोड़ों जन्म, कितने ये नित्य शाश्वत है ये आत्मा, उसमें 100 साल भी कितना एक मतलब आंखों के पलक झपकने के समान है, एक सपने जैसा है, उसको हम इतना गंभीरता से ले लेते हैं। और हमारा शाश्वत जीवन जो है वो सपना लगता है हमको, क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के बाद फिर से जन्म आया रे, ये सब, ये हमारी परिस्थिति है। त्रिभुवने संजीवने का औषधम, मरे हुए को जिंदा करने वाला औषध है ये। श्रील प्रभुपाद जी भी जब पाश्चात्य देश में गए, ये क्या फिप्पी लोग क्या थे, मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ, चलते फिरते मुर्दे थे, बस मुर्दे से भी गए गुजरे। मुर्दा तो चुपचाप सोता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, ये लोग और भी तकलीफ देते, अपने आप को, दूसरों को भी। पर ऐसे लोगों को जीवन दिया ये औषध पिला के, हरिनाम की औषधि। तो त्रिभुवन ए संजीव, पूरे त्रिभुवन को जीवन दान प्रदान, फिर से जीवन दान प्रदान करने वाला, शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला संजीवन एक औषधम। फिर कहते हैं भक्ता अत्यंत हित औषधम, भक्तों के लिए अत्यंत हित है। क्यों अत्यंत हित है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, क्या क्या फायदा देते वाता है भक्त अत्यंत हित औषधम, ये बड़ा हित करने वाला है, हितकारी औषध है ये, सब कुछ प्रदान करने वाला। भक्ता अत्यंत हित औषधम भव भय प्रध्वंस नहीं का औषधम, भव भय, हर एक व्यक्ति भय भयभीत है इस संसार में, हर एक को भय, पर प्रध्वंस नहीं का औषधम पूर्ण रूप से ध्वंस कर देता है। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, छोटे छोटे जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में इतना बड़ा भय, और बाद में जब हरिनाम लेने लगे, हरिकथा सुनने लगे, बोले नहीं। परीक्षित महाराज भी मृत्यु का भय चला गया, बोले सुखदेव को स्वामी जी आप गाते रहिए, जो सांप आके काटने दो, अपना काम करने दो, आप अपना काम करते रहिए, बोलते जाइए मैं अपना काम कर रहा हूं, सुनते रहेंगे सब, अपना अपना काम करते रहे, चलेगा। निर्भय हो गए पूर्ण रूप से। भव भय प्रध्वंस नहीं का औषधम श्रेय प्राप्ति कर औषधम, सबसे बड़ा श्रेयस क्या है? कृष्ण प्रेम। हरिदास ठाकुर से पूछा गया, जब वो गोवर्धन और हिरण्य मुजुमदार के घर गए थे सप्तग्राम में, रघुनाथ दास के मामा के घर गए थे, तो उस समय प्रश्न पूछा लोगों ने, इनका कहना है, महान विद्वान है ये, पंडित हैं, इनका कहना है कि हरिनाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं, इनका कहना है कि मुक्ति मिलती है, कृपया आप बताइए। बोले हाँ, पाप निकल जाता है, जैसे सूरज उगता है तो अंधकार चला जाता है, पाप तो निकल जाता है। बोले मुक्ति, मुक्ति भी मिल जाती है, तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही है, ये तो ये सब छुट्टे का सौदा है। बोले असली चीज क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है ये, तो ये मेन है। श्रेय प्राप्ति कर औषधम पिबमाना श्री कृष्ण दिव्य औषधम। सो भवौषधा, भवौषधि है ये। फिर श्रोत्र मनोभिरामा, पर आप बोलेंगे औषध तो साधारणतः जो भी औषध है, भले आयुर्वेदिक हो होम्योपैथी हो, कुछ बड़ा कड़वा होता है, एलोपैथी तो थोड़ा ज्यादा ही होता है, होम्योपैथी छोटा समझ में नहीं आता है, तब तक समझ ही गुल अंदर चला जाता है, कड़वा होते हैं। बोले नहीं, मनोभिरामा बहुत ही मीठा है। किस, बोले तीन प्रकार के लोग को फायदा होता है भवौषधि। किसके लिए, जिसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम वो भी पी सकता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, रासलीला के बारे में चर्चा है, मेरे को सुनना है, उनको रासलीला के बारे में सुना हो तो आ जाएंगे वो लोग भी। कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है, रासलीला में इंटरेस्ट है, फिर भी सुनते हैं थोड़ा बहुत। और जो साधक हैं हम जैसे लोग, उनके लिए 50% औषधि, 50% मनोभिरामा। पहला आधा घंटा मनोभिरामा, उससे ज्यादा बोला तो औषधि हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी आके बोलना शुरू किए, एक घंटा बोलिए महाराज, उसके बाद तो थोड़ा कड़वा लगता है। तो साधक लोगों के लिए ठीक है, 16 माला ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा कड़वा लगता है। पर जो मुक्त आत्मा है सुखदेव गोस्वामी जैसे, उनके लिए मनोभिरामान, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में रमण करते हैं। उसके बिना उनको लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा, अगर ये नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। भवौषधा श्रोत्र मनोभिराम कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात। फिर कौन नहीं सुनेगा इसको, अरे इतना फायदा है, भवौषधि जैसा है, मन को सुनने में आनंद देता है, फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं सुनते, कौन नहीं सुनेगा। बिना विरज्येत बिना पशुघ्नात, बोले दो प्रकार के लोग नहीं सुनेंगे, जो हमेशा पशु को हर रोज मारते हैं, यानी कसाई लोग, एक प्रकार का पशु को मारने वाले लोग, निर्दयी कठोर हृदय वाले, जो अपनी जिह्वा के लालसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी तकलीफ देने के लिए तैयार हैं, किसी का जान लेने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसा हरिकथा में दिलचस्पी होगी। दूसरा पशुघ्नात कौन, जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, किसी बकरी को बलि चढ़ाओ, एक मुर्गी को चढ़ाओ, उसको चढ़ाओ यज्ञ में, यज्ञ के नाम पे पशु को मारने वाले, सदय हृदय दर्शित पशु घातम निंदसी यज्ञ विहे अहा श्रुति जातम, वेदों में वर्णित है ये, तो वो काटना। ऐसे लोगों को जो केवल इस भौतिक संसार में सुख रखने रहना चाहते हैं और इसलिए किसी को भी काटने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को हरिकथा मन भाता नहीं है। बिना पशुनाथ। और तीसरे हैं जो मायावादी, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, कथा करने के लिए ठीक है, सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं, क्यों, आत्महनो जना, अपने आप को नष्ट करने वाले हो। तो इनके अलावा और सब सुनेंगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, वो तो दूर की बात, वो जाने दो, आप मुझे जरूर कृष्ण के बारे में सुनाइए। क्योंकि सुंदर अगले श्लोकों में कहते हैं, क्यों मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृष्ण मेरे पितामह जो 5 पांडव थे उनको उन्होंने ही बचाया, तो खास कृष्ण के बारे में मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, क्योंकि हमारे पूरे वंशज को, हमारे जो वंश में जितने सारे मेरे पितामह हुए, पितामह में समरे अमरंजयी देवव्रताद्याति रथे तिमिंगलय दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन मत्स वत्स पदम स्मयत प्रवाह। सुंदर से कहते हैं पितामह में हमारे पांच पितामह जो भीम युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पितामह में मेरे पितामह यानी परीक्षित महाराज के पिता और उनके प्रपिता पितामह में समरे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अमरम जय ही सामने कौन खड़े थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा कर्ण बाद में आया अश्वत्थामा। तो इन लोगों ने बड़े बड़े देवताओं को हराया था भीष्म पितामह ने परशुराम को लड़ाई में ललकारने वाले ऐसे लोग देवव्रताद्याति रथे अतिरथी महारथी से भी श्रेष्ठ अतिरथी हजारों लोगों को एक साथ मारने वाले तिमिंगले तिमिंगला मास नाम का एक तिमी जो बोल के एक शार्क होता है ना शार्क बहुत ही खतरनाक मछली उसको भी निगलने वाला तिमिंगला। और हमारे पितामह कैसे थे छोटे छोटे मछलियां जैसे और इधर थे देवव्रत आद्या भीष्म पितामह जैसे सबको निगल जाने वाले पूरे पांडव की सेना को आधा दिन में निगलने वाले। पर देवव्रत आद्या रथे तिमिंगले दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कौरव सैन्य एक सागर के समान था। कोई भी व्यक्ति आज तक सागर को तैर के पार कर पाया है बोले ये हमारे पांच पांडवों को पितामहों को इस कौरव सैन्य के सागर को पार कर पाना नामुमकिन था दुरत्ययम। पर कृष्ण की कृपा से कृत्वा अतरन बड़े आसान से पार कर गए वत्स पदम गाय के बछड़े के खुर का पानी जैसे बन गया। तो अगर मेरे पितामह जीवित रहे कृष्ण की कृपा से वो छोड़ो सुखदेव गोस्वामी जी उनकी तो दूर की बात बट मेरा सोचो मैं आज अगर जिंदा हूं तो ये कृष्ण की कृपा से द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट विदम मदंगम संसान भी संतान बीजम कुरु पांडवानाम। बोले द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा मैं अपनी मां के गर्भ में था उत्तरा के गर्भ में मुझे मारने के लिए छोड़ा था और मेरा शरीर प्रायशः नाश हो चुका था। तो पर जुगोप कुक्षिम गता आत्त चक्रो शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण मेरे मां के गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचाया मैंने उनका दर्शन किया अपनी मां के गर्भ में आज मैं जीवित हूं उन्हीं की कृपा से। जुगोपकुक्षिम गता आच मातुश्च में यह शरणम गताया क्यों क्योंकि मेरी मां शरण गई मेरे पितामह को कैसे बच गए क्योंकि कृष्ण के शरण गए। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हम सबको कहते हैं कि वीर्याणी तस्य अखिल देह भाजाम हम जैसे जीव हरेक को जिसको एक शरीर मिला है मृत्यु की ओर जा रहे हैं यानी ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ दिया हमारे ऊपर भी है कि नहीं किसको कब लगेगा नहीं मालूम हर सूर्यास्त और सूर्योदय यानी ब्रह्मास्त्र पास पास आ रहा है जिसका भी शरीर है मृत्यु आने वाली है। पैदा हो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु पैदा होते ही काल के रूप में माया एक बाण छोड़ती है वो कभी कभी 100 साल में आता है कोई 70 साल में आता है किसी को 2 साल के अंदर आता है तो आ रही है वो उससे बच नहीं सकता। पर वो आने से पहले अगर हम भी शरण जाएंगे भगवान के कैसे ये कृष्ण कथा सुनते हुए निवृत्त तर्षे रूपगीय माना सही व्यक्तियों से सही भावना से तो फिर बाहर से और अंदर से परमात्मा के रूप में और बाहर से काल के रूप में वही मृत्यु जो है वो अमृत प्रदान कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो भी शरीर छोड़ा भगवान के सामने वो भगवत धाम गया भगवान का दर्शन करते हुए। तो हम सब की स्थिति परीक्षित महाराज और पांडव जैसी है अगर हम शरण जाएंगे तो ठीक है नहीं तो कौरव जैसे मरेंगे मरना तो है ही पर कोई एक के लिए मृत्यु जो है अधोगति ले जाती है और दूसरे लिए मृत्यु जो है भगवत धाम ले जाती है। और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं और करने के बाद कहते हैं, हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं और अतवेव वे सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, कहां जन्म लिए, कहां गए। नवे अध्याय में आपने तो शॉर्टकट में बता दिया। नवे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक के अंदर कृष्ण लीला बोल दिए, पिता के घर में जन्म लिए, उसके बाद नदी पार करके ब्रज में गए, उसके बाद मामा को मारे, उसके बाद सारे असुरों को मारे, फिर गीता सुनाया, हरि बोल कृष्ण भगवान की जय, हो गया। तो बोले ऐसे शॉर्टकट में आपने बता के खत्म कर दिया, गलत बात है। तो बोले कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, ऐसा कैसा हुआ, कितने दिन वृंदावन में थे, कौन कौन से लीला किए, कब वहां से मथुरा गए, वहां से द्वारका में इतने सारे रानियों का विवाह किया, वो कैसे हो गया। और ये सब कहने के बाद कहते हैं, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उनको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। अत्यंत उत्सुक हूं मैं, जो प्रश्न पूछा है वो बताइए, और बाई चांस अगर प्रश्न पूछा नहीं है तो उसका भी उत्तर दे दीजिए। तो कोई कह सकता है कि शायद उनको डर है, परीक्षित महाराज को डर है कि बेचारे सुखदेव गोस्वामी सोचते होंगे, अरे परीक्षित बेचारा राजा है, हमेशा पीता पीता खाता पीता आदमी था और पिछले एक हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया है, बेचारे को नींद लग रही होगी, भूख लग रहा होगा, प्यास लग रहा होगा, कथा समाप्त कर देंगे। तो बोलते नहीं, ये संशय मन में हो सकता है, इसीलिए कहते हैं, नैषा तिदुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदपिम बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजम च्युतम हरिकथामृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही। आप चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते पहले मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं थका हुआ था, और मैं शिकार खेलते 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 एक मुनि के आश्रम में गया, पानी मांगा, उन्होंने दिया नहीं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मरे हुए सांप को उन मुनि के गले में डाल दिया। तो आप सोच सकते हो, हाँ एक हफ्ता पहले बेचारा प्यासा होगा तो किसको किसी क्या क्या कर दिया, अभी मेरे को भी मार के भगा देगा ये, हो सकता है आप ऐसे सोच रहे हैं। बोले नहीं, मैं ऐसा क्यों व्यवहार किया वो भगवान जाने, पर उस समय मैं अमृत का पान नहीं कर रहा था, पर क्योंकि आपके मुख से अभी मैं अमृत का पान कर रहा हूं, भले मैं खाया नहीं हूं एक हफ्ते से, भले मैं पिया नहीं हूं, भले मैं सोया नहीं हूं, पर इन चीजों से बाधा नहीं हो रहा है, बाधा नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण, माइक चला गया फिर भी, हरे कृष्ण, बाधा नहीं हो रहा है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम देखते हैं एक्चुअली कि जब हम हरि कथा नहीं सुना करते थे तब अगर कोई कुछ बोल दिया तो फिर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आ जाते थे, पर आज क्योंकि हम बार 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 सुनते हैं, आज जब ऐसे समस्याएं आती है, सहन करने के लिए बड़ी मुश्किल कुछ परिस्थितियां आती है, आज उतना तकलीफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम हरि कथा सुन रहे हैं, इसकी महिमा है ये। और इस तरह से या सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, पहले पहले धन्यवाद देते परीक्षित महाराज को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा, और कहते हैं कि हे परीक्षित जी सुनो, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान से संबंधित प्रश्न आपने जो पूछा है और उसका उत्तर मैं जो देने वाला हूं, तीन प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है। वक्तारम, जो बोलने वाला, पृच्छकम, प्रश्न पूछने वाला, और श्रोत्रम, जो सुनने वाले, तीनों, हरे कृष्ण, तीनों को ये शुद्ध कर सकता है। क्यों? वक्तारम, सबसे ज्यादा वक्ता शुद्ध होता है, क्योंकि श्रोता शायद सो रहा है, क्या मालूम, अगर लाइट चला गया तो पता भी नहीं चलता कौन सो रहा है। पर वक्ता सो नहीं सकता, वो सो गया तो सबको जगाना ही पड़ेगा उसको तुरंत, और वक्ता को कम से कम ध्यान तो रखना पड़ता है, कथा में मग्न रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है वक्ता को। दूसरे नंबर, जो प्रश्न पूछा, कम से कम प्रश्न पूछने के बाद सो तो नहीं सकता वो, क्योंकि उसको देख के ही प्रश्न देखा उत्तर दिया जाता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उसको उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र में सब लोगों ने सुना। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, परीक्षित महाराज नहीं सोए क्योंकि प्रश्न पूछे थे, उत्तर सुन रहे थे। और श्रोत्रिम, जितने लोग श्रोता लोग बैठे हैं उनको भी फायदा होता है। तत्पाद सलिलम यथा, जिस प्रकार भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा जी तीनों लोकों को, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों को शुद्धिकरण करती है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के चरणामृत तीन तरह के लोगों को शुद्ध करते हैं, जो उसको पीते हैं, जो उसको सर पे डालते हैं, और आधा सर पे डालकर बाकी पीते हैं, तीनों को पवित्र कर देता है। इस तरह से आपने ये प्रश्न पूछा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, और मेरी शुद्धिकरण के लिए, आपकी शुद्धिकरण के लिए, और जितने सारे श्रोता हैं आज के और भविष्य के, 5000 साल पहले बातचीत चल रही थी, आज भी हम उसका फायदा ले रहे हैं। और ये कहकर अब परीक्षित महाराज को दशम स्कंद शुरू करेंगे, और वो कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान के जो अवतरण का लीला, उससे पहले क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड, और तत्पश्चात किस तरह से भगवान का लीला शुरुआत हुआ दशम स्कंद में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि।